नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर स्टार्टअप प्रतिनिधि अपनी उद्यमशीलता के सफर से जुड़े अनुभव भी साझा करेंगे।
स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश आधारित विकास को सक्षम बनाना था। पिछले एक दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिला है, जिसमें देश भर में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। भारत 2030 तक $7.3 trillion की अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अवसर उन युवाओं के साहस, नवाचार और उद्यमशीलता की भावना का जश्न मनाता है, जिन्होंने वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट।
अब लोग 19 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों CEO के अनुरोधों और अन्य प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद संशोधित समय सीमा तय की गई है। निर्वाचन आयोग ने CEO को दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि में विस्तार के बारे में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हज यात्रियों और अन्य हितधारकों को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 25 तारीख तक अंतिम विस्तार दिया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार इस विस्तारित अवधि के दौरान हज यात्रियों को बुकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अपने वैध पासपोर्ट भारतीय हज समिति या संबंधित हज समूह आयोजकों को जमा करने होंगे और निर्धारित समय सीमा के भीतर नुसुक पोर्टल पर सफलतापूर्वक बोर्डिंग सुनिश्चित करनी होगी। इसराइल की राजधानी तेल अविव स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इसराइल की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। दूतावास ने इसराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों तथा समय समय पर सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की न्यूयॉर्क में कल एक आपातकालीन बैठक हुई। इसमें ईरान में तेजी से बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की गई। ईरान में देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को सुरक्षा बलों द्वारा हिंसक तरीके से दबाया जा रहा है। आर्थिक तंगी, बढ़ती महंगाई और मुद्रा के गिरते मूल्य के कारण भड़की इस अशांति में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। ये बैठक अमेरिका के अनुरोध पर बुलाई गई थी। तटरक्षक बल ने अरब सागर में भारतीय समुद्र सीमा में पाकिस्तानी नौका अल मदीना को पकड़ा है। मछली पकड़ने वाली इस नाव में चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। इन लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन तटरक्षक बल ने नाव को रोका और उसकी तलाशी ली। इसके बाद नाव को पोरबंदर बंदरगाह ले जाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में तटरक्षक बल ने कहा है कि ये त्वरित अभियान देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के प्रति बल की प्रतिबद्धता दर्शाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी में सुखात में राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके अंतर्गत उत्तम शोध कार्य और आधिकारिक सांख्यिकी की व्यवस्था में सुधार में योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। नामांकन 31 जनवरी तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज दिल्ली में लक्ष्य सेन का सामना चीन के लिन चुन यी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।